शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा, निर्मल सी गंगा उज्जवल सी यमुना, निर्मल सी गंगा उज्जवल सी यमुना, परम पावनी सा तेरा प्यार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा।
ओम शांति। हम सबके बीच में विशेष भट्टी के भाई बहनों को बहुत ही अनुभव युक्त क्लास कराने के लिए आदरणीय हमारे पुष्पा बहन जी विशेष पहुंचे हैं, तो सभी एक हाथ की ताली से बहन जी का अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। आपका परिचय तो बहुत बेहद सेवाओं का बड़ा है, परंतु संक्षेप में बताएंगे, बचपन से ही आप बाबा के बच्चे बनकर साकार बाबा की पालना लेकर चल रहे हैं और 40 वर्षों से समर्पित रूप से बेहद की सेवाएं दे रहे हैं। आप बाबा के बहुत अमूल्य रतन, दिल्ली में मुख्य सेवा केंद्र पांडव भवन के आप डायरेक्टर हैं और भारत में, देश विदेश में, कोने कोने में आप बेहद सेवाओं के लिए सदा ही तैयार तत्पर रहते हैं और आप ऐसे बाबा के सौभाग्यशाली रतन हैं। प्यारे बाप दादा का वो प्यारा सा रथ, दर्शनीय मूरत सबके दिलों में विराजमान, प्यारे दादी जी आपको उनके अंग संग रहने का सौभाग्य प्राप्त है और आज आप विशेष हम सबको बेहद की वैराग्य वृत्ति पर अपने बहुत ही अमूल्य प्रेरणादायक पुरुषार्थ में तीव्रता लाने वाले अमूल्य ऐसे रत्नों से झोली भरेंगे आदरणीय पुष्पा बहन जी।
ओम शांति। हम सभी प्यारे बाप दादा के बहुत बहुत लाडले और श्रीमत पर चलने वाले बच्चे हैं, क्योंकि मैं ऐसा समझती हूँ कि हम हर एक के दिल में हैं, कि जैसा प्यारे बाप दादा हमसे चाहते हैं हम वैसा जल्दी से जल्दी बनकर दिखाएं। है सबके दिल में, हाँ बोलो, है सबके दिल में। कोई भी ब्राह्मण ऐसे नहीं कहेगा कि नहीं देख लेंगे, बन पाए तो बन जाएंगे। हाँ मान लिया जयपुर शारद चाहे ढीला हो भी, सपोज हाँ, तो भी उसकी जो आंतरिक अंदरूनी फीलिंग्स हैं, इच्छा है, वो तो बहुत तीव्र पुरुषार्थ करने की है। कई बार कई बाबा के बच्चे आकर कहते हैं, बहन जी मैं तो चाहता हूं मैं बहुत तेजी से आगे बढ़ जाऊं, मेरी अब इस दुनिया में दिल नहीं लगती, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है, बिजनेस करना पड़ता है, ये भी करना पड़ता है, वो भी करना पड़ता है, होता है ना ऐसे। या माताएं कहेंगी, बहन जी क्या करूं, हाँ मेरा तो दिल करता है बस मैं सेंटर पे आ जाऊं, बाबा की छुट्टी नहीं है, ऐसे ना। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि अब हम सब का बुद्धि योग इस पुरानी दुनिया से उठ गया है, उठ गए हैं। थोड़ा आंजी ढीली ढीली है क्योंकि अभी लंगर जो है, बाबा कहता ना मुरली में, आपका लंगर उठ गया है और चल पड़ा है बेड़ा आगे की ओर, अब पीछे की ओर मुड़ के नहीं देखना। तो मुझे जब कहा कि वैराग वृत्ति के ऊपर बताना है, मैंने कहा वैरागी हैं तो यहाँ आए ना, हैं बाबा के बन गए, तो मींस हमने रियलाइजेशन कर ली कि अब इस दुनिया में कुछ नहीं रखा। आप जब औरों को संदेश देते हैं और उनको बताते हैं, देखो अब आप भगवान आया है, नई दुनिया बना रहा है, आप भी चलो सुनो, और अगर वो थोड़ा इंटरेस्ट कम दिखाते हैं तो आप क्या बोलते हैं, अभी ये फंसे हुए हैं, इनका अभी मोह टूटा नहीं है, इनको अभी सच्चाई समझ में नहीं आई है, अभी इनको वैराग नहीं आया है, कहते हैं ना ऐसे। इसका मतलब हमें सच्चाई भी पता है, हमें पुरानी दुनिया से वैराग भी है, ये अर्थ निकलता है ना। लेकिन अब जब हम वैराग वृत्ति की बात करते हैं तो इसका ये अर्थ है कि अब हमको जितना पुरानी दुनिया से तो हमने अपने आप को काफी क्या कर लिया, कर लिया ना, बुद्धि योग हट गया ना, लेकिन एकदम हम बिल्कुल इतनी हमारी वृत्ति सूक्ष्म रूप से भी कहीं जाए नहीं, ऐसा हम सब चाहते हैं। बाप दादा ने एक बार कहा था कि आप बच्चों की ही वैराग्य की वृत्ति की लहर वाइब्रेशन सारी दुनिया की आत्माओं को वैराग्य लाएगा। अब दुनिया को वैराग्य नहीं आ रहा, टाइम लग रहा है, उन्हें दुनिया के भौतिक साधनों में आकर्षण है। अभी तक भी हम सब यही समझते हैं, सेवा करते हैं तो अनुभव करते हैं ना, लोगों को होश नहीं, बिजी हैं, कोई बिजनेस में, कोई फैशन में, कोई घूमने में, कोई किस में, कोई किस में। तो बाप दादा ये चाहते हैं कि हमारी अपनी इतनी अंदर से डिटैचमेंट हो कि उसका वाइब्रेशन उन आत्माओं को जाए। और आजकल दुनिया में देखो परेशानियां भी बढ़ती जा रही हैं, और ऐसी ऐसी परेशानियां बढ़ रही हैं जो किसी के मन सोच तक कभी जा भी नहीं सकती, है ना। ऐसी घटनाएं सुनते हैं, कहते हैं ये तो हम कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकते कि ऐसा भी हो सकता है। तो उन सब को का कारण है कि वैराग वृत्ति की वाइब्रेशन दुनिया में फैलनी बहुत आवश्यक है, और वो तब होगी जब हम सब ब्राह्मणों के अंदर इतनी अंदर से डिटैचमेंट हो, इतनी। जब यज्ञ की स्थापना हुई और ब्रह्मा बाबा का आप सबने जीवन कहानी तो सुनी पढ़ी होगी ही, वो सुनाने की जरूरत नहीं है। चाहे हमारी दादियां उस समय आई, हाँ, समर्पित हुई, कोई छोटी आयु में थे, कोई बड़ी आयु में थे, तो उनको कैसे तुरंत वैराग आ गया? सोचो जरा। सब अपने घरों में सुखी थे, कोई दुख के कारण नहीं आया था, कोई समस्या के कारण नहीं आया था। ब्रह्मा बाबा भी अपने बिजनेस में बहुत मस्त थे, कोई कमी नहीं थी किसी बात की। और बहुत बाबा तो एकदम जैसे भक्ति भी नंबर वन की करते थे, सब कुछ आप जानते हो, सुना हुआ है। लेकिन तुरंत कैसे एकदम बाबा ने अपने आप को सभी बातों से न्यारा कर लिया? अक्सर लोग समझते हैं कि कोई दुख आता है ना, फिर वैराग आता है। हाँ, या कई बार ऐसे होता भी है, कहीं कोई भी बात में कठिनाइयां बहुत आई, हाँ, घटनाएं बहुत घटी, कहते बस मेरा दिल यहां से उठ चुका है। तो इसको वैराग नहीं कहेंगे। वो तो दुनिया में भी क्या होता है, शमशान में जाते हैं, कहते जिंदगी में कुछ नहीं आई आना है, हाँ? और फिर जब बाहर आते हैं, वो जानते हो ना आप सब, अगले ही दिन सब कुछ भूल जाता है। अपना ही नजदीक का संबंधी, हाँ, जिसने शरीर छोड़ा होता है, वो भी भूल जाता है। वो टेम्परेरी वैराग नहीं, हमारी वृत्ति ही ऐसी बन जाए जो हमें किसी भी बात का कोई भी आकर्षण, किसी भी बात की कोई भी खींच, कहीं भी हमारा मन भागे नहीं जहां हम नहीं चाहते, ऐसी हमारी वृत्ति बन जाए। तो ब्रह्मा बाबा को या हम दादियों को देखें, कैसे छोटी आयु में ही तुरंत देह और देह के संबंधियों को भुला दिया। दादियां सुनाती हैं, कहती हमको तो कुछ पता ही नहीं था, भरे पूरे परिवार से, संपन्न परिवार से हम आ गए और हमको बस बाबा ही बाबा दिखता था और कुछ नहीं। भले वो स्थापना का समय था, बाबा की मदद भी थी, लेकिन ज्ञान से समझ लिया कि ये दुनिया अब अंतिम छोर में है। बुद्धि ने एकदम रियलाइज कर लिया कि अब इस दुनिया में कुछ नहीं रखा है। का मित्र संबंधी बुलाते भी थे, मिलने भी आते थे, तो हमारी इच्छा नहीं होती थी। बाबा कहता था, जिसको छुट्टी देता था तो मिलते थे। चलो वो उस समय उनका पार्ट था, आप सब तो परिवार में रहने वाले हैं, बाबा कहेगा निभाओ, हाँ? लेकिन एक है निभाना और एक है, वो आप समझ सकते हो। तो मुझ आत्मा को अभी अपनी स्थिति को कैसा रखना है कि भले मैं सबके बीच में हूं लेकिन मेरी वृत्ति कहीं भी ना जाए। क्या सचमुच बाबा कहता है आपकी एक आंख में शांति धाम हो और एक आंख में सुख धाम हो? माना तो ये दुख धाम, ये पुरानी दुनिया मुझे कहीं भी दिखाई ना दे, भले मैं इस पुरानी दुनिया के अंदर हूं। इतना हमारी वृत्ति के अंदर हमें अपना भविष्य दिखाई दे, हमें अपना घर दिखाई दे, तो कहेंगे वैराग वृत्ति। अब ये मेरी खुद की अपनी महसूसता है, इसके लिए मेरा खुद का अपना पुरुषार्थ है, अपनी अंदरूनी डिटैचमेंट चाहिए। कभी कभी कई भाई बहने इसका असली भावार्थ भी नहीं समझ पाते, कहते हैं कि कुछ अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए वैराग है ये। और फिर कहीं कुछ अच्छा लग गया तो फंस भी जाते हैं। तो क्या हुआ, ये तो बाह्य टेम्परेरी हुआ ना, हाँ, हम खुद अपने आप को देख सकते हैं ना ये बात, कहीं किसी बात से धोखा मिला, कहीं किसी बात से दुख मिला, तो लगा ये दुनिया अब कोई काम की नहीं है। और कहीं कुछ बहुत हमारा नाम मान शान हो गया, कहीं हमें किसी बात का बहुत लाभ हो गया, कोई हमें बहुत चाहता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, तो इसको वैराग वृत्ति नहीं कहेंगे। डिटैचमेंट मींस जो हमारी पहली पहली श्रीमत है कि देसई दे के सब सबको भूल, गीता में आता है सर्व धर्मान परितज्जे, माना मैं हूं सबके साथ, दे भी मेरे साथ है, दे के पदार्थ भी मेरे साथ है, ऐसे नहीं उनको यूज नहीं करना है, संबंध भी साथ में निभाना है, लेकिन मैं आत्मा उन सबसे न्यारी रहूं। और जिस घड़ी मेरे आगे कोई ऐसी बात होती है उस समय मुझे वो इफेक्टेड ना करे, तब है कि मैं उनसे बिल्कुल न्यारी हूं। और ऐसी न्यारी अवस्था ही वास्तव में वैराग वृत्ति की निशानी है। एक बार क्या हुआ, एक माता थी, तो उसका जो पुरानी माता थी, बहुत अच्छी पक्की निश्चय बुद्धि, एकदम धारणाओं में भी सभी बातों में, तो उसका जो पति था वो सहयोगी था, उसको ज्ञान मालूम था लेकिन रेगुलर स्टूडेंट नहीं था। तो उसकी कोई भी माता जो है वो अच्छी पुरुषार्थी थी, चाहती थी पति भी ऐसे ही पुरुषार्थ करे, रोज मुरली सुने, लेकिन कहती थी अच्छा पार्ट है इसका जो भी है, तो उसके उससे ऐसे लगता था इसको बिल्कुल किसी भी प्रकार से अपने परिवार में, बेटा बहू भी थे, कोई जरा भी लगाव या झुकाव तो बहुत दूर की बात है, रिंचक भी कहीं किसी बात का वो नहीं है, वृत्ति बिल्कुल न्यारी है, बल्कि कभी कभी तो वो उसके लिए कुछ उल्टा भी बोल देती थी कि ये ऐसा है, हाँ बाबा का बन जाए नहीं तो अपनी तकदीर खराब करेगा, होता ना कई बार हम किसी के ज्यादा शुभ चिंतक होते तो भी ऐसे हो जाता है, तो हम उसको समझाते थे नहीं ऐसे नहीं कहते हैं, आप तो उसका भला सोचती हो ना, कहते फिर बाबा का क्यों नहीं बनता, तो माना बिल्कुल डिटैच थी। लेकिन क्या हुआ, कुछ समय के बाद उसके पति ने शरीर छोड़ दिया और हमारे पास फोन आया कि ऐसे ऐसे बिजनेस करता था, ठीक था, तबीयत थोड़ी वो हुई, तो हमने कहा ठीक है मैंने तो जाती ही है, और फिर हम क्रिया पर गए तो मुझे पता लगा कि उसकी तो माता की हालत बड़ी खराब है, वो तो रो रो के एकदम, और उसका बेटा बहू उसको संभाले, उसके संबंधी उसको संभालें, और मेरे को बाद में कहा आप रुकना, क्योंकि हमने जैसे भाषण किया आपको पता ही है फिर क्रिया में सब आए हुए होते हैं, सब तरफ से पगड़ी रस्म होती है, तो कहा आप रुकना क्योंकि अभी सारे लोग बैठे हैं, तो सभी चले गए 10-15-20 मिनट के अंदर, हम रुके आधा घंटा, बाद में उस माता से बातचीत की और वो एक भी बात उसको सुनने की शक्ति ही नहीं। हमने कहा देखो तुम तो क्या चाहती थी, अब उस आत्मा का ऐसा पार्ट है, तुम तो पहले से डिटैच थी, तो एकदम बोली मैं उसके बिना जी नहीं सकती। हम तो सुन के आश्चर्यचकित रह गए। हमने कहा मन में सोचा उस समय उसकी स्थिति सुनने लायक नहीं थी कि ये माता जो कहती थी मेरा किसी में जरा भी कुछ नहीं है और आज इसके मुख से ये शब्द निकले हैं, ऐसा क्यों हो गया, तो उसके संबंधी भी हैरान होते थे, कहती ये तो उसकी परवाह भी नहीं करती थी और इसको उसका ख्याल भी नहीं होता था, उसने खाना भी खाया कि नहीं खाया, इतनी है तो बस सेवा करनी है बाबा की हूँ, और आज इसके मुख से ऐसे है और ये उसके बिना खाना भी नहीं खा पा रही है। फिर हम उसको समझाते रहे, हमने कहा अभी अभी ये घटना घटी है, थोड़ा होता है जिस टाइम बात आती है तो उस समय कई बार मनुष्य अपने को नहीं संभाल पाता है, अपने आप 15-20 दिन बाद 2-4 महीने में नॉर्मल हो जाएगा सब, परंतु बाद में फिर हमने देखा क्योंकि वो तो माता संपर्क में थी ही, आती ही थी, लेकिन उन दिनों आना उसका कम हो गया, पर उसकी स्थिति में सुधार नहीं आया और वो ये कहे अब मुझे अकेले अच्छा ही नहीं लगता। हमने कहा बाबा को भोग लगाना है, आप रोज सुबह शाम बनाओ, आप ये नहीं सोचो मैं अपने लिए बना रही हूँ, चलो बाबा के लिए बना रही हूँ, वो खाना ना खाए। तो हमने महसूस किया कि देखो कई बार मनुष्य को ये मालूम ही नहीं चलता कि मेरी सचमुच वैराग्य वृत्ति है। हम ऊपर ऊपर से देख के अपने को खुश कर लेते हैं, मैं मुरली पढ़ती हूँ, मैं सेवा करती हूँ, मैं तो बहुत अच्छी पुरुषार्थी हूँ, मैं तो आगे बढ़ रही हूँ, बहन जी तो मुझे बहुत मेरी महिमा करती है, मैं देखो सेवा में भी लगाता हूँ तन मन धन। लेकिन सचमुच मेरी वृत्ति में डिटैचमेंट है, ये धोखा ना हो जाए। क्योंकि अब अंतिम समय है, अब आप सबके पास कितना समय पुरुषार्थ करने का आप सोचो। दादियों ने तो चलो 78 वर्ष कर लिया, खूब योग लगाया। आपने कितना योग लगाया हिसाब लगाओ, हर एक हिसाब लगाए अपने आप से, तो हम समझ सकते हैं ना। पहले बाबा ने कई बार कहा था कि देखो आपका बहुत काल का अभ्यास है, अगर मेरा बहुत काल का अभ्यास नहीं है तो मैं किसी भी परीक्षा में फंस सकती हूँ। क्या सचमुच मैंने अपने अंदर इतनी शक्तियां भरी हुई हैं जो मेरे सामने कोई बात आए और मैं उसके प्रभाव में न आऊं। वैराग सिर्फ इस बात को नहीं कहते हैं कि मैंने खाना पीना छोड़ दिया। क्या छोड़ा, खा तो हम सब कुछ रहे, खराब छोड़ा ना। हम सोचते हैं मैं बड़ी वैरागी हूं, मैंने फैशन छोड़ दिया, सिंप्लिसिटी है, अच्छी धारणा है, ये बाबा ने हमें कराई है, बहुत आवश्यक है। लेकिन सूक्ष्म में भी कहीं मेरा किसी प्रकार की कोई इच्छा जागृत ना हो, भले संसारिक नहीं होगी, भौतिक नहीं होगी, लेकिन सूक्ष्म में आत्मा के जो संस्कार भी कई जन्मों के बने हुए हैं उसमें भी मैं कहीं फंस ना जाऊं, ऐसी हमारी वैराग वृत्ति चाहिए। ब्रह्मा बाबा के जीवन में बाबा नंबर वन कैसे चलेगा एकदम? बाबा के जीवन में तुरंत कि शिव बाबा ने ये कहा है तो अब मुझे यही करना है, उसी अनुसार बाबा का पुरुषार्थ चलता रहा। बाबा की तो आप हाँ जीवन कहानी में पढ़ते ही हो कि अपने संबंधियों को भी बाबा ने कैसे चलाया, और अंदर से बाबा एकदम ऐसे आत्मिक वृत्ति में आ गए कि बाबा ने गहराई से अंदर से अपने आप को ऐसा तैयार किया कि मुझे किसी भी प्रकार से देह के संबंध का आकर्षण ना हो। बाबा के पास सब रहते थे, बाबा की युगल भी पास रहती थी, बच्चे भी रहते थे, अन्य बहनें भी आके समर्पित हो गईं, तो बाबा उनको देखता भी था तो अंदर ही अंदर अपने आप को पक्का कराता था, महसूस कराता था ये युगल नहीं ये आत्मा है। ऐसे बाबा ने देह के संबंध से अपने आप को बिल्कुल न्यारा करता चला गया। अंदर ही अंदर बाबा एकदम चाहे अपना और पराये का अंतर बाबा का मिटता चला गया। बहुत मिसाल है सुनाने को ऐसे। एक बार बाबा की जो सबसे छोटी बच्ची अभी भी बॉम्बे में है, हमने उनसे पूछा, कहती है कि जब शुरू शुरू में एकदम, क्योंकि बाबा का बच्चों से बड़ा प्यार था, लौकिक में पालना भी बाबा ने बहुत अच्छी रॉयल दी, तो कहा जब और बहनें भी आके रहने लगी तो एक बार बाबा के सामने और बहनें भी खड़ी थी, मैं भी गई, तो बाबा ने उनको प्यार से ऐसे हाथ से लेके और कहा बैठो, और मुझे कहा नहीं, तो मैं रोने लग गई और कमरे में जाके छिप गई। बाबा को बाद में पता चला, बाबा ने कहा सूर्या बच्ची कहाँ है? तो जसोदा जो बाबा की युगल थी, बाबा को बताया, आज तो वो रो रही है। तो बाबा ने फिर पूछा, तो उसको ये फीलिंग आई कि बाबा तो हमेशा मेरे से इतना प्यार करते रहे, हमेशा मेरे को गोदी में ले लेते थे, और अब जो वो दूसरी आई हैं, उनको बाबा ने कहा बैठ जाओ, और मेरी तरफ बाबा ने देखा तक नहीं। तो होता ना जैसे लौकिक में भी, हाँ, एक को पूछो दूसरे को नहीं, तो बच्चे रोने लग जाते हैं। तो वो रोने लग गई, नाराज हो गई, कहती है मेरे को उस समय ये समझ में नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे मुझे पता चला कि अब बाबा मेरा पिता सिर्फ नहीं है, बाबा इन सब का पिता है। तो बाबा की जो वृत्ति थी वो इतनी बेहद की बन गई और इतनी सब संबंधियों से डिटैच और न्यारी बन गई। तो ऐसा उससे बाबा ने, उसने कहा कि बाद में हमें महसूस हुआ कि कैसे अब बाबा सबका बाबा है, ये बाबा के वैराग की निशानी थी। तो हम सब भी, शिव बाबा हमसे जो चाहता है कि बच्चे अब आप सभी बातों से, भले सब कुछ कर रहे हो लेकिन अंदर से कितने डिटैच हो, कहां कहां हमारी वृत्ति जाती है, ये अपनी सूक्ष्म हमें चेकिंग करनी पड़ेगी। कई फिर वैराग का अर्थ ये समझ लेते हैं कि नहीं, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, अभी क्या ये सब, इन बातों में क्या रखा है मिलना जुलना लेना देना, ऐसा नहीं। हाँ, वैराग करना है हमको बाबा जो चाहता है इस पुरानी दुनिया के सभी पुराने स्वभाव संस्कारों से। हमें कोई संगठन से वैराग नहीं करना, हमें कोई सेवा से वैराग नहीं करना, हमें कोई ये नहीं कि अब बस योग ही लगाना है। कोई कोई फिर क्या करते हैं, हम कई बार कहते हैं ना कि बाबा कहता है बस अब सब बातों से न्यारा, कहेंगे बहन जी बस मैं बाबा के कमरे में बैठूंगा और कुछ नहीं करूंगा। अरे भाई और कुछ क्यों नहीं करेंगे? दादियां हमारी देखो आज दिन तक भी, कौन सा ऐसा कार्य जिसमें दादियां अपनी जिम्मेवारी ना समझती हूं, चाहे सेवा है, चाहे परिवार से मिलना है, चाहे योग का पुरुषार्थ है, हाँ, चाहे मुरली का अध्ययन है, सभी बातों में, चारों ही विषयों में दादी का आज दिन तक। दादियां तो आपके सामने है ना, भले आप सबने कोई मम्मा बाबा को ना भी देखा हो, दादियां तो आप सबके सामने है ना। तो बाबा ने हम बच्चों को हमारी आंतरिक वृत्तियां कहीं भी फंसे नहीं, और उसके लिए बाबा कहते बच्चे अब ये याद रखो, ये आपकी रिटर्न जर्नी है, हम वापिस चल रहे हैं। तो जब कोई वापिस चल रहा होता है कहीं से, तो वो कुछ भी बोझ अपने साथ ज्यादा लादना नहीं चाहता, कहते बस अब हमारा लक्ष्य पूरा हो गया, हमारी यात्रा पूरी हो गई, तो उसकी वृत्ति वहां से हट जाती है धीरे धीरे। तो हम सब भी अब रिटर्न जर्नी कर रहे हैं। ऐसे तो देखो सन्यासियों को भी दिखाते हैं, बड़े वैरागी हैं, हाँ, लेकिन हम सच्चाई अब समझ गए हैं ना। किस आधार से सच्चाई समझ गए? क्योंकि हमने ये, बाबा ने हमको बता दिया बच्चे पुरानी दुनिया और नई दुनिया क्या है, तमो प्रधानता और सतो प्रधानता क्या है, हाँ, देह के संबंध और वैभव पदार्थ क्या है। तो जैसे एक बात की सच्चाई समझ में आ गई है, पता चल जाए ये नकली हीरा ये असली हीरा है, तो आपकी वृत्ति कहाँ जाएगी? अपने आप ही असली में जाएगी। तो ये समझ मिलने से हम समझ गए कि वास्तव में इस दुनिया से हमें कैसे न्यारे होकर चलना है, भले हम परिवार में भी बैठे हैं। तो एक बारी क्या हुआ कि मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, छोटी सी रियल ये मिसाल है कि एक ने संन्यास लिया और उसका बच्चा था और युगल थी। तो युगल जो है वो बहुत समझदार थी, अज्ञानी, अपने बच्चे को उसने अपनी मेहनत से पाला, बच्चा बड़ा हुआ, लेकिन उसने कभी भी अपने बच्चे को बताया नहीं कि तेरा पिता कैसा था, कहाँ गया, क्यों, कुछ नहीं बताया। वो पूछता भी था तो कहती थी चला गया। तो वो बच्चा जब बड़ा हुआ तो वो भी किसी गुरु के संपर्क में आया, तो जब गुरु के संपर्क में आया, उसको अच्छा लगा जब गुरु कुछ भी सुनाता था, उपदेश बताता था, वो उसकी संगत में बैठता था रोज जाके थोड़ा घंटा दो। और धीरे धीरे गुरु ने भी देखा कि ये बच्चा बड़ा सुपात्र है और इसके संस्कार बड़े अच्छे हैं, तो गुरु ने भी उसको धीरे धीरे बहुत समीप लाया। और जब समीपता होती है तो व्यक्तिगत भी सब एक दूसरे का पता लगने लगता है, तो वो बच्चा क्योंकि समीप आया तो गुरु की सेवा भी करने लगा। तो एक दिन वो गुरु की अलमारी साफ कर रहा था, तो अलमारी साफ करते करते उसको एक फोटो मिला उसके अंदर। और जब उसने उस फोटो को देखा तो वो फोटो उसकी माँ का ही था। उसको एकदम शॉक लग गया कि ये मेरा गुरु और मेरी माँ का फोटो इसके पास कैसे है। और वो बेचारा अंदर ही अंदर बड़ा घबराए, सोचे कि मैं गुरु को पूछूं या नहीं पूछूं। और घर में भी आया तो उसको नींद नहीं आई कि माँ को पूछूं या नहीं पूछूं। उसे कुछ समझ नहीं आया, एकदम कंफ्यूज हो गया बहुत ज्यादा। तो इस उसमें उसके दो चार दिन बीत गए, उसको नींद आए नहीं। आखिर उसने सोचा मैं गुरु जी से पूछता हूं। तो उसने ये नहीं बताया कि ये मेरी माँ का चित्र है। उसने गुरु जी को कहा, गुरु जी मैं आपकी अलमारी साफ कर रहा था तो मुझे ये चित्र मिला, ये किसका चित्र है। तो गुरुजी का क्योंकि उस बालक के प्रति विश्वास था और वो बालक भी अच्छे संस्कारों का था, तो गुरुजी ने सच सच बात सुना दी। कहा कि मैंने संन्यास लिया है, मैं भी प्रवृत्ति में ही था और मेरी पत्नी थी और बच्चा था, और मुझे वैराग आया और मैं छोड़ के चला आया। लेकिन चलते समय क्योंकि मेरा पत्नी से बड़ा प्यार था तो मैं उसका फोटो अपने साथ रख के ले आया, और तो कुछ नहीं लाया। और वो फोटो मैंने अभी तक संभाला हुआ है, इसलिए मेरी अलमारी में आपको मिल गया। और अब भी मुझे कभी कभी जब उसकी याद आती है तो मैं फोटो निकाल के देख लेता हूँ। तो उस बच्चे को सारी बात समझते हुए देर नहीं लगी, समझ गया ये मेरा ही पिता है। और वो उसी घड़ी ही अपनी माँ के पास गया और अपनी माँ के चरणों में गिर गया, कहा माँ आज से मेरी गुरु तुम हो वो नहीं। आप सोचो तो वैराग की परिभाषा क्या है। तो सन्यासी नहीं समझ पाए, या कहें कि वो ताकत उनके पास नहीं आ पाई। और बाबा ने हम बच्चों को ये ताकत दी है और यही ही हमारा वास्तव में मंजिल है। जो बाबा हम बच्चों को कहते, बच्चे तुम्हें कुछ भी याद ना आए, भले आप खाओ रहो पियो घूमो मिलो, लेकिन कुछ भी याद ना आए। जब साकार में बाबा से बच्चे मिलने आते थे तो बच्चों को बाबा में बड़ा प्यार, बाबा को बच्चों में बड़ा प्यार, और बाबा इतनी ऐसी रूहानी पालना देते थे तो हर एक के दिल से बाबा के प्रति कितना आभार निकलता था। लेकिन जब बाबा से बच्चे छुट्टी लेने लगते थे तो बच्चों की आंखों में आंसू होते थे, बाबा रुमाल हिला के विदाई देते थे। धीरे धीरे बच्चे दूर जा रहे हैं गेट से और झरझर आंसू बह रहे हैं। बच्चों को बाबा से दूर होना अच्छा नहीं लगता था साकार में, तो बाबा को भी कोई अच्छा नहीं लगता था कि बच्चे दूर जाएं। तो बाबा उस समय कहा करते थे, बच्चे ना विसरो ना याद रहो। समझा कि तुम भूलो भी नहीं और तुम याद भी नहीं रहो। ये कितनी ज्ञान की महीनता है सोचो। जैसे एक सर्कस वाला तलवार के ऊपर चलता है, उसे कितना बैलेंस रखना पड़ता है, ऐसे ही बाबा ने हम बच्चों को इस ज्ञान और योग से इतना शक्तिशाली बनाया है कि बच्चे आप साथ भी रहो लेकिन ना याद रहो ना विसरो। भूलो भी नहीं और याद भी न रखो। इतनी सूक्ष्मता प्यारे बाबा ने हम बच्चों की आत्माओं के अंदर भरी है। इसलिए बाबा कहते हैं एक आंख में शांति धाम हो और एक आंख में सुख धाम हो। इतनी हमारी इस पुरानी दुनिया से जैसे लंगर उठ चुका है और ऐसे वैराग की स्थिति प्यारे बाबा मम्मा और हमारी दादियों की बनी, और इसलिए आज हम दादियों को देखते हैं कि कितनी वो तपस्वी मूरत और कितनी त्याग मूरत हैं। उनको अपने त्याग का भी आभास नहीं है। आज हम किसी बात का त्याग करते हैं ना तो हर एक को अंदर थोड़ा वो होता है, जैसे दिल में दर्द उठता है ना थोड़ा, कहते मैं इतना त्याग करके भी मेरे को क्या, ये समझते हैं मैं इतना सहन करती हूँ, हाँ मैं इतना सुनता हूँ, हम क्या क्या सोच लेते हैं। अगर हमें सचमुच वैराग है, हमें चाहिए ही नहीं, भले हम कर रहे हैं क्योंकि हमारी ड्यूटी है, क्योंकि हमें श्रीमत मिली है, तो फिर मुझे अपने त्याग का, अपने सहन करने का दुख दर्द नहीं होगा, खुशी होगी। बल्कि खुशी भी नहीं, मैं तो कहूंगी खुशी तो है ही नेचुरल, उसके होने की क्या बात है कि मैंने सहन किया, मेरे नंबर ज्यादा हैं, इसलिए मैं खुश हूं, इसलिए मैं आगे हूं, इससे भी मैं न्यारी। क्योंकि हमारी अंतर आत्मा अपने आप में भरपूर हो रही है। जितनी जो चीज भरपूर होती है उतनी ऑटोमेटिकली फुलफिलमेंट होने के कारण से कुछ भी उसके अंदर जाने की जरूरत ही नहीं होती। मान लीजिए आपका पेट बहुत भरा हुआ है, बहुत भरा हुआ है, फिर हम आपको ऑफर करते हैं ये जरा थोड़ा खा लो, और कहेंगे नहीं बहन जी अभी नहीं, अभी नहीं मैं ले सकता। हम किसी भी बात से बिल्कुल तृप्त हैं तो हमारे अंदर किसी दूसरी बात की एंट्री नहीं हो सकती है। कोई मटका भरा हुआ है, आप उसके ऊपर से कुछ भी डाल दो, चाहे देसी घी भी डाल दो, बाहर चला जाएगा, भले वो पानी से भरा हुआ है। वो ये थोड़ा कहेगा अच्छा मैं घी ले लेता हूं, नहीं तो पानी बाहर निकालना पड़ेगा। हम जितना जितना अपनी आत्मा को ज्ञान बल से, योग बल से, उन शक्तियों से भरपूर करते जाते हैं तो हमारे अंदर कुछ भी इस पुरानी दुनिया का एंट्री नहीं कर सकता, ये समझ लो। तो आप बाबा के, क्योंकि बहुत विशेष रतन है ना, जहाँ वीआईपी गेट होता है वह जनरल कुछ एंट्री कर सकता है, हाँ कर सकता है, नहीं कर सकता ना, चेकिंग होती है, हाँ ये वीआईपी गाड़ी है या नहीं है, ठीक है, कहीं भी कुछ ऐसा होता है। तो हम बाबा के कौन से बच्चे हैं? विशेष बच्चे हैं। कोटू में कोई, कोई में भी कोई, और उन कोई में भी आप बहुत विशेष हैं। आप सोच रहे होंगे हमें ही क्यों बहन जी कह रही है विशेष हैं? क्यों कहा होगा बताओ, यहाँ आए इसलिए, जो नहीं आए वो नहीं होंगे है? अच्छा फिर तो हर एक को साल की पहली बट्टी में नंबर लेना पड़ेगा है? नहीं ठीक सुना रहे ऐसे तो, ये बात तो राइट है, लेकिन आपको तपस्या की लगन है। अगर तपस्या की लगन नहीं होती तो आप पहुंचते नहीं, समझा? तो बाबा के बच्चे जो इतनी अंदर से तपस्या करके अपनी शक्तियों को बढ़ाते हैं, जो भी बाबा के बच्चे, हाँ कोई में कोई तो बाबा के बनते ही हैं, परंतु उनमें भी बाबा तो कहता है ना, हाँ कि पुरुषार्थी तीव्र पुरुषार्थी, हाँ फिर नंबर वन पुरुषार्थी। तो हमारी ऐसी तपस्या की लगन कि अंदर से मैं आत्मा भरपूर होती जाऊं, हमारा वैराग हमें खाली करने वाला नहीं, ये कमाल की बात है। देखो रिवर्स से दुनिया में समझते हैं वैराग मना खाली, और हम वैराग मना भरपूर, तो कहीं भी राग होगा ही नहीं। कहीं भी बुद्धि योग तप जाता है, ये निशानी है, कहीं भी आकर्षण तब होता है, कहीं भी हमें कोई खींच तब होती है जब हमारा अंदर कोई कोना खाली है, किसी भी प्रकार का कोई कोना खाली है, आप समझ लो। तो हमको अभी अपने आप को ऐसा बनाना है कि मैं आत्मा अपने तीनों शक्तियों सहित, मन से, बुद्धि से, संस्कारों से, ऐसी सतो प्रधानता की ओर पहुंचूं कि मैं भरपूर आत्मा बन जाऊं। अब हमें यही देखना है। अभी कुछ दिन पहले सकार मुरली में बाबा के महावाक्य थे, मैं समझती हूँ एक हफ्ता ही हुआ होगा, मुझे डेट नहीं याद आ रही, कि दुनिया में तमो प्रधानता बढ़ती जाएगी और हम बच्चे अपनी तपस्या से सतो प्रधानता की ओर बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो डिफरेंस बढ़ जाएगा। समझा? एक चीज ऊंची उठती जा रही है और एक चीज नीची आती जा रही है, ऑटोमेटिकली क्या होगा, अंतर बहुत बड़ा दिखाई देगा, गैप बहुत ज्यादा दिखाई देगा। तो जब गैप बहुत ज्यादा दिखाई देगा तो सबका ध्यान ऑटोमेटिकली जाएगा। लेकिन वो गैप कब ज्यादा दिखाई देगा, जब मेरा पुरुषार्थ इतना होगा कि मैं तमो से रजो में तो आ गई, रजो से सतो में भी आ गई, लेकिन उसकी प्रधानता तक पहुंच रही हूं। तो दुनिया एक तरफ तमो प्रधानता की अति में है, बढ़ती जा रही है ना तमो प्रधानता, और हम जो है वो दूसरी तरफ सतो प्रधानता की ओर अधिक है। ये चाहिए, और ये तब होगा कि मेरी सतो प्रधानता बढ़ती जाए, तब तो मेरा भविष्य भी सतयोगी वैसा होगा कि जब मैं इस समय अपनी आत्मा को सभी रूहानी शक्तियों से, सभी रूहानी दिव्यता गुणों से भरपूर करती जाऊं, और ये भरपूरता ही वास्तव में हमें वैराग वृत्ति वाला बना देती है। फिर कुछ नहीं फर्क पड़ता, कुछ नहीं जरूरत लगती, कुछ नहीं आकर्षण होता, क्योंकि मैं अंदर से बहुत भरपूर हूं। मेरी अंतरात्मा अंदर से हर रीति से सुखी, आनंदमय, संतुष्ट, भरपूरता में है, तो उसके लिए तो हो या ना हो दोनों समान है। है तो भी अच्छा, नहीं है तो भी अच्छा। योगी की परिभाषा भी हम सुनाते हैं ना, वो लाभ और हानि, हर्ष और शोक, में समान रहता है। तो ये वैराग वृत्ति से ही हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। सिर्फ मैं योग लगाती हूँ इससे ही मैं समझ लूँ कि मैं समान हो जाऊंगी, लेकिन मेरे योग का इतना बल जमा होगा, मैं योग से अपने अंदर जब सब शक्तियां जमा करूंगी तो मेरी ये अवस्था बनेगी, और वैराग वृत्ति की ये निशानी है। तो हमारा वैराग कोई हमें अंदर से उदासी लाने वाला, शून्य बनाने वाला, न्यारा कर देने वाला, अलग बना देने वाला, ऐसा नहीं है। हमारा वैराग हमें भरपूर करने वाला है। ऐसी आत्मा रूहानी मौज में आपको दिखाई देगी, ये निशानी होगी। वो कभी उदास नहीं दिखाई देगी, कभी हैरान नहीं दिखाई देगी, कभी डिस्टर्ब और कंफ्यूज नहीं दिखाई देगी, वो रूहानी नशे में होगी। आपने बाबा का चित्र देखा होगा, बाबा ऐसे लेटा हुआ पहाड़ी पे, एकदम रूहानी मौज में है। विष्णु को भी लेटा हुआ दिखाते हैं शेषनाग पर, ये है वैराग वृत्ति की निशानी। कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या है, दुख है या सुख है, लाभ है या हानि है, ना वो समान अवस्था में है। तो बाबा हम बच्चों को ऐसी रूहानी मौज, रूहानी आनंद, रूहानी ईश्वरीय नशा, वे जीवन हमारा बना रहे हैं। ये वैराग वृत्ति वाले के जीवन से दिखाई देगा। तो इस प्रकार से बाबा हम बच्चों को ज्ञान बल से, योग बल से, धारणा के बल से, सेवा के बल से, सब ये जमा करके आत्मा को इतना शक्तिशाली बनाते हैं, भरपूर बनाते हैं कि फिर हाँ कोई भी चीज हमें प्रभावित नहीं कर सकती। ऐसे हम वैराग वृत्ति वाले बाबा के बच्चे इस दुनिया को बदल रहे हैं। हाँ? अपने ही वैराग की वृत्ति से, शक्तियों से वो वाइब्रेशन सारी दुनिया में हम पहुंचाएं। ये सेवा अब हमारी है कि अन्य आत्माओं को भी वैराग आए कि अब इस दुनिया में कुछ नहीं रखा है, अब हमारा संबंध ईश्वर के साथ होना चाहिए, तो वो भी बेचारे अपनी परेशानियों से मुक्त हो जाएं, समस्याओं से मुक्त हो जाएं, बंधनों से मुक्त हो जाएं। ऐसी हमारी वैराग वृत्ति की लहर भी चारों ओर का वायुमंडल, पूरे विश्व का वायुमंडल ऐसा बना दे। तो सब कुछ करते हुए भी, निभाते हुए भी, एकदम जैसे हम न्यारे भी हैं और प्यारे भी हैं। ओम शांति।
तब तब कर निखरेगा जीवन, तब कर बनते देव महान, तब से मिलता जीवन का सुख, तप से मिलता जीवन दान। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता।
बहुत बहुत दीदी जी का धन्यवाद। वैराग्य वृत्ति क्या है इस पर बहुत सुंदर क्लियर सबको स्पष्ट हो गया होगा। वास्तविक वैराग वृत्ति का संबंध ज्ञान, समझ, रियलाइजेशन और संपन्नता है। तो बहुत बहुत कई बार वैराग वृत्ति अपने अपने तरीके से अपना लेते हैं, जिससे फिर बहुत सी बातों में कई समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो आज अच्छी तरह से सबने समझा होगा कि बेहद का वैराग्य किसको कहा जाता है। तो दीदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया है, धन्यवाद है।